नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक कपिल और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
शुक्रिया, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। टेनिस में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने रोमांचक मुकाबले में इटली के विश्व नंबर एक खिलाड़ी जैनिक सिनर को हराकर फ्रेंच ओपन खिताब जीता। जर्मनी के म्यूनिक में शुरू हो रहे ISSF विश्व कप 2025 के लिए भारतीय निशानेबाजी दल प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार। FIH हॉकी प्रो लीग में नीदरलैंड ने भारत को 3-2 से हराया और ग्रैंड मास्टर नारायण SL ने दिल्ली इंटरनेशनल ओपन ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट के चौथे दौर में वियतनाम के ग्रैंड मास्टर ग्वेन डुक होआ को हराया। टेनिस में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने 5 सेट के रोमांचक मुकाबले में इटली के विश्व नंबर एक खिलाड़ी जैनिक सिनर को हराकर फ्रेंच ओपन खिताब जीत लिया। फाइनल मैच में 2 सेट से पिछड़ने और 3 चैंपियनशिप पॉइंट बचाने के बाद मौजूदा चैंपियन अल्काराज संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अल्काराज ने ग्रैंड स्लैम इतिहास के सबसे रोमांचक फाइनल में से एक 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6 से शानदार जीत दर्ज की। मोना जी, जैसा शुरुआती मैच चला, पहले 2 सेट हार कर लग रहा था कि जैनिक सिनर आसानी से ये मैच जीत रहे हैं, लेकिन फिर जो अल्काराज ने वापसी की वो बेहद शानदार रही।
देखिए, ऐसा ही होता है, जो चैंपियन खिलाड़ी होते हैं वो किसी भी पल से, किसी भी मुकाम से मैच में वापसी कर लेते हैं। आपको याद होगा एक बार विंबलडन में रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच के बीच भी ऐसा ही मैराथन मुकाबला चला था। तो आज जब ये मैच हो रहा था तो मुझे वही दिमाग में घूम रहा था, जिस तरीके से पहले सेट, दोनों सेट हार गए थे, तीसरा सेट भी हार गए थे और चौथे में जो उन्होंने 3 मैच पॉइंट इम्पॉर्टेंट बचाए और फिर वो सेट जीतकर उसको निर्णायक में खींचा, और वाकई में जो उनको कहा जाता है, कार्लोस अल्काराज स्पेन से आते हैं और उनको कहा जाता है कि वो राफेल नडाल के वारिस हैं, तो वो बिल्कुल सही कहा जाता है, क्योंकि लाल बजरी पे खेला जाता है ये फ्रेंच ओपन रोला गैरो जो है वो लाल मिट्टी पे, और लाल बजरी का बादशाह कहा जाता था राफेल नडाल को, और ठीक उसी अंदाज में खेल दिखाया है आज कार्लोस अल्काराज ने। बिल्कुल हारी हुई बाजी थी और जिस तरीके से वो वापस लौटे हैं, और आप देखिए सामने प्रतिद्वंद्वी कैसा था, कि अमेरिकी ओपन जीत चुका है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुका है, लगातार तीसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल जीतने वाला था, लेकिन अल्काराज ने उनके मंसूबों पर फानी फेर दिया और अपने नाम 5वां ग्रैंड स्लैम भी दर्ज कराया, और क्ले कोर्ट पे जो उनका रिकॉर्ड है 22-1 का हो गया है। तो जो मैं बार बार कह रही हूँ कि वाकई वो नडाल के वारिस हैं, तो आज उन्होंने अपने खेल से, और सबसे अच्छी बात जो इस फाइनल की मुझे लगती है कि आप देखिए, एक 22 साल का खिलाड़ी, एक 23 साल का खिलाड़ी, 21-23 साल के खिलाड़ी काफी युवा हैं, और उम्मीद हम ये करते हैं कि जो टेनिस से, जो Fab 4 जिनको हम टेनिस के कहते हैं, उसमें से 2-3 रिटायर हो चुके हैं, एक ही बचे हैं, जोकोविच, फेडरर चले गए, नडाल चले गए, एंडी मरे चले गए, तो सिर्फ एक जोकोविच बचे हैं जिनको सिनर ने हराया था और उनका अभी 25वें ग्रैंड स्लैम के लिए इंतजार लंबा कर दिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन युवा खिलाड़ियों में से एक नया Fab 4, Fab 3 हमें फिर से देखने को मिलेगा।
मुकाबले के बाद जैनिक सिनर ने कहा था कि ये मुकाबला उनकी समझ से परे था और उन्हें शायद नींद नहीं आएगी, लेकिन मुकाबलों में शायद ऐसा ही होता है। श्रोताओं को बता दें, ये उनका अल्काराज का दूसरा फ्रेंच ओपन था और उनका लगातार 5वां ग्रैंड स्लैम था। इसके बाद जैनिक सिनर को, जैसे अल्काराज का हम देखते हैं कि जैसे आपने बात की फैब फोर की, इसके बाद नए खिलाड़ी आएंगे, वो आएंगे, तो टेनिस भी रोमांचक होता जा रहा है, क्ले कोर्ट हो या फिर लाल बजरी पे खेला जाए, तो इसके बाद जो अल्काराज है तो उनकी आगे की क्या राह होगी?
देखिए, अभी तो कितने युवा खिलाड़ी हैं और 5वां ग्रैंड स्लैम फाइनल खेले हैं, अभी बहुत कम उम्र है उनकी, तो उम्मीद अब इसके बाद जो विंबलडन होगा वहां पर जरूर कोशिश करेंगे, कि यहाँ क्ले कोर्ट पे तो खेल लिया, वो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है विंबलडन, वहां भी अपना लोहा मनवाना चाहेंगे, और इस तरह की प्रतिद्वंद्विताएं जो होती हैं वो वाकई किसी भी खेल को विकास करने के लिए, दर्शक जुटाने के लिए, अगर इस तरह के रोमांचक मुकाबले होंगे जहां सांसें थमी की थमी रह जाए, तो वाकई उसकी व्यूअरशिप आप देखिए कितनी बढ़ेगी। कोई भी नहीं चाहता कि नीरस मुकाबले हो, फाइनल इसी तरह का होना चाहिए।
कल का फाइनल था वो बताते 5 घंटे से ज्यादा,
5 घंटे 29 मिनट जो फ्रेंच ओपन में एक रिकॉर्ड फाइनल है और उसमें भी ऐसा नतीजा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। तीन सेट तक लोगों को लगा था कि सिनर के लिए बहुत आसान मुकाबला है।
इसीलिए सिनर का मानना था कि नतीजे उनके उससे परे रहे।
अब आप देखिए तीन उसके बाद अगर आप हार जाते हैं उस मुकाम पर जाकर और आप दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी हैं, आप दो बार पिछले दो ग्रैंड स्लैम जीत कर यहाँ तक पहुंचे हैं, आपने सेमीफाइनल में सबसे प्रबल दावेदार को हराया है, उसके बाद आप आकर एक ऐसे खिलाड़ी से हार जाते हैं जो पहले ही दो सेट गंवा चुका है, तो वाकई में उनको तो नींद नहीं आएगी और उनके साथ साथ उनके जितने प्रशंसक है कई समय तक ये जो कसक है ना उनके मन में रहेगी
कि ऐसे कैसे हार गए। इससे पहले दूसरी वरीयता प्राप्त इटली की जोड़ी सारा ईरानी और जैस्मिन पाउलिनी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में कजाकिस्तान की अन्ना डेनिलिना और सर्बिया की अलेक्जेंड्रा कुन्निक को जोड़ी को 6-4, 2-6, 6-1 से हराकर खिताब जीता। जर्मनी के म्यूनिक में ISSF विश्व कप 2025 निशानेबाजी में भारत का 36 सदस्य दल भाग ले रहा है। भारतीय दल का नेतृत्व पेरिस 2024 के पदक विजेता मनु भाकर, सरजोत सिंह और स्वप्निल कुसाले कर रहे हैं। निशानेबाजी में भारतीय टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन करते जा रही है। ऐसा पिछले अगर आंकड़ों को देखें, पिछले टूर्नामेंट को देखें, पहले जो ISSF विश्व कप हुए हैं उसमें भी भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया।
बिल्कुल, विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया और पेरिस ओलंपिक में भी भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा, क्योंकि पिछले कुछ समय से ब्लैंक आ रहा था ओलंपिक में। तो जब ओलंपिक पदक आता है तो उस खेल के लिए वो संजीवनी की तरह होता है और उसके बाद से आप देखिए कि पदक चाहे कोई भी जीते लेकिन पूरा जो दल होता है उसमें उत्साह का संचार होता है, प्रदर्शन बेहतर होता है और आप जब टूर्नामेंट में जाते हैं तो आपको एक प्रबल दावेदार के रूप में देखा जाता है। तो ये बहुत ही मजबूत टीम भारत ने भेजी है। इसमें मनु भाकर है जो दो पदक जीत चुकी है ओलंपिक पेरिस ओलंपिक में, स्वप्निल कुसाले हैं और सरबजोत सिंह है जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित मनु भाकर के साथ पदक जीता था, और इलावेनिल वालावरिवन भी है जो काफी अनुभवी निशानेबाज हैं, और इसके साथ साथ तीन नए खिलाड़ी नए निशानेबाजों को
भी जा रहे हैं,
जैसे अनन्या रायडू है, नए निशानेबाजों को भी इसमें मौका मिला है।
आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट।
दो बार की पदक विजेता इलावेनिल वलारिवन से विश्व कप के पहले दिन पदक की सबसे ज्यादा उम्मीदें होंगी। उनके अलावा देश के तीन निशानेबाज महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल और पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धाओं में पहली बार इस आयोजन में भाग लेंगे। भारत पहले दिन दो पदक स्पर्धाओं में विश्व कप में पदार्पण करने वाले तीन खिलाड़ियों को मैदान में उतार रहा है। इसमें राष्ट्रीय चैंपियन अनन्या नायडू महिला स्पर्धा में तथा आदित्य मालरा और निशांत रावत पुरुष स्पर्धा में स्तर पर पहली बार किस्मत आजमाएंगे। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल और पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धाओं के फाइनल कल होंगे। इसके अलावा 10 स्पर्धाओं में से 4 के लिए एलिमिनेशन और क्वालिफिकेशन भी कल शुरू होंगे। भारत की एयर राइफल निशानेबाज आर्या बोरसे भी सीनियर स्तर पर अपने शुरुआती साल में है, वे शानदार फॉर्म में है। मनु भाकर 10 मीटर और 25 मीटर पिस्टल स्पर्धाओं और 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में भाग लेंगी। सरबजोत सिंह केवल 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा भाग लेंगे, जबकि दो बार की ओलंपियन इलावेनिल वलारिवन महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भाग लेंगी। इस बीच स्वप्निल कुसाले 50 मीटर राइफल तीन पोजीशन में वर्ष के अपने पहले ISSF विश्व कप में भाग लेंगे। इस स्पर्धा में वे पिछले साल ओलंपिक में कांस्य पदक जीत चुके हैं। म्यूनिख में ISSF विश्व कप में 78 ओलंपिक समितियों के लगभग 700 एथलीट भाग ले रहे हैं। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
भारत की 10 वर्षीय रेसर अतिका मीर ने ट्रिनेच रोटेक्स यूरो ट्रॉफी में शीर्ष 10 में जगह बनाकर एक और उपलब्धि अपने नाम की। इस उपलब्धि को हासिल करने वाली वह पहली भारतीय बन गई हैं। रोटेक्स यूरो ट्रॉफी एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्टिंग सीरीज है। अतिका ने स्टील रिंग सर्किट में आयोजित रोटेक्स यूरो ट्रॉफी के दूसरे चरण में 9वां स्थान हासिल किया। FIH हॉकी प्रो लीग में नीदरलैंड ने भारत को आज हुए मुकाबले में 3-2 से हरा दिया। मोना जी, कल भी भारत को हार का सामना करना पड़ा नीदरलैंड से और आज भी हार गए, तो ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम में क्या ऐसे समन्वय नहीं बैठ पा रहे हैं कि जीत के लिए
देखिए एफआईएच प्रो लीग का ये यूरोप चरण है। इससे पहले भुवनेश्वर में इसका भारत चरण जब हुआ था तो भारत ने 8 मैच खेले थे और 15 अंक बनाए थे, तीसरे स्थान पर तालिका में है। और यहाँ गौरतलब बात यह है कि जो टीम एफआईएच प्रो लीग में शीर्ष पर रहेगी उसको विश्व कप जो अगले साल होने वाला है उसमें सीधे प्रवेश मिलने वाला है। तो भारत की कोशिश यही थी यहाँ जाने से पहले कि अधिकतम अंक जुटाए यहाँ, लेकिन शुरुआत बहुत ही निराशाजनक हुई है। जैसे कि ओलंपिक चैंपियन है नीदरलैंड की टीम, काफी कठिन प्रतिद्वंद्वी है और कोई मौका नहीं दिया आप ऐसी टीमों के खिलाफ, एक गलती की भी गुंजाइश नहीं होती।
आज भी देखा है कि स्कोर बराबरी पे थे 2-2।
भारत ने पहला गोल किया 20वें मिनट में, अभिषेक जो युवा खिलाड़ी हैं बहुत ही खूबसूरत फील्ड गोल उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद नीदरलैंड ने जबरदस्त वापसी की। और सबसे निराशाजनक जो पहलू था कि 9 पेनल्टी कॉर्नर भारत को मिले इस पूरे मैच में, और बार बार कोच क्रेग फुलटॉन कहते हैं कि पेनल्टी कॉर्नर हमारा जो है उसको और बेहतर करना होगा। फील्ड गोल पर ज्यादा पिछले कुछ समय में देखा हमने कि फोकस है, लेकिन पेनल्टी कॉर्नर बहुत खराब था। 57वें मिनट में एक जुगराज सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्ट किया। उसके अलावा आप जिस टीम में बड़े बड़े पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ हैं, अमित रोहिदास है, कप्तान हरमनप्रीत सिंह है, और ऐसे में आप 8 पेनल्टी कॉर्नर जाया करते हो और वो भी नीदरलैंड जैसी टीम के साथ, इसके बाद आपको अर्जेंटीना से खेलना है, इसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया से खेलना है और फिर बेल्जियम से खेलना है एंटवर्प में, तो ये काफी कठिन टूर्नामेंट है। और अगला जो भारतीय हॉकी टीम का बिजी कैलेंडर है लॉस एंजलिस ओलंपिक तक, उसको देखते हुए लगता है कि अभी काफी पहलुओं पर टीम को मेहनत करनी होगी।
भारतीय टीम नए टेस्ट कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए तैयार है। भारतीय टीम इंग्लैंड पहुंच गई है। पहला मुकाबला 20 जून को होगा, लेकिन ये मुकाबला बिना विराट कोहली और रोहित शर्मा के होगा।
रविचंद्रन अश्विन को भूल गए हैं आप, रविचंद्रन अश्विन भी इस टीम में नहीं है। तो ये एक बदलाव का दौर है भारतीय क्रिकेट के लिए, जिसके दो सबसे बड़े नाम जो पिछले एक दशक से थे, चाहे वो विराट कोहली हो चाहे वो रोहित शर्मा हो, दोनों नहीं है। एक 25 साल का नया कप्तान है के सामने बहुत ही इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना, आप स्विम सीम है, स्विंग है, रफ्तार है, इंग्लैंड का गेंदबाजी आक्रमण आप देखिए, और अभी हमारे बल्लेबाजी क्रम में भी केएल राहुल सबसे अनुभवी बल्लेबाज हैं। उसके अलावा काफी बड़ी चुनौती है शुभमन गिल के सामने, गौतम गंभीर के सामने। टीम वहां पहुंच चुकी है और 20 जून को लीड्स में पहला मैच खेला जाएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो अभ्यास मैच हुआ उसमें राहुल सेंचुरी बना चुके हैं, तो काफी कुछ दारोमदार होगा उनके ऊपर इस 5 मैचों की श्रृंखला में।
लेकिन ये कहीं तक ऐसा टीम नहीं लग रहा है कि एक तरफ इंग्लैंड की पूरी अनुभवी टीम जिसमें बड़े बड़े दिग्गज हैं जो हर तरीके से टीम को परेशान करेंगे, चाहे वो अपनी बैटिंग हो, और लेकिन देख रहा है मेन जो इंग्लैंड की टीम है वो भारतीय टीम को बॉलिंग में बहुत परेशान करने वाली
है। बिल्कुल करने वाली है। जेम्स एंडरसन की हमेशा से भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द साबित होते रहे, लेकिन आपने अनुभव की बात की, तो जब 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था, तो क्या किसी ने सोचा था कि एक नया कप्तान टीम को वर्ल्ड कप
जिता सकता है।
तो मैच के दिन आप क्या प्रदर्शन करते हैं वो बहुत मायने रखता है। बहुत कुछ इस युवा ब्रिगेड को साबित करना है, और ये जो पूरी भारतीय टीम है इसमें आईपीएल खेलने से इनको अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ इतना अनुभव हो गया है खेलने का कि वो दबाव का सामना करना जानते हैं।
लेकिन कई बार कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी आईपीएल में अपना असली रूप नहीं दिखाते हैं।
देखिए ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम तो यही कोशिश में यही दुआ करेंगे कि भारतीय टीम वहां से 5 मैचों की श्रृंखला जीत कर लौटे और जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के जख्म है उन पे मरहम लगे।
शीर्ष वरीयता प्राप्त ग्रैंड मास्टर नारायण एसएल ने राष्ट्रीय राजधानी में चल रही दिल्ली इंटरनेशनल ओपन ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट के चौथे दौर में आज वियतनाम के ग्रैंड मास्टर ग्युएन डुक होआ पर जीत हासिल की। वे भारतीय दल का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्रैंड मास्टर दीप्तैन घोष और 2 अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने भी भारतीय टीम के प्रदर्शन को मजबूत करते हुए शानदार जीत दर्ज की। श्रोताओं अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। मोना जी आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम खेल खबरों पर हमसे बात की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
शुक्रिया।
और श्रोताओं इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।